ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के समक्ष पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। घाटी की नदियों में साफ पानी बहने की व्यवस्था होने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा का कथन। नेपाल में आज कोरोना के 620 नए मामले आए सामने और पाकिस्तान में मानसूनी बारिश और बाढ़ से अब तक 320 लोगों की हुई है मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नवनियुक्त अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति भंडारी ने अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहित संवैधानिक अंगों के प्रमुख लगायत की उपस्थिति थी। इससे पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने प्रधानमंत्री देउवा की सिफारिश पर आज दोपहर शर्मा को अर्थमंत्री नियुक्त किया था। बता दें कि बजट निर्माण के दौरान अनधिकृत व्यक्ति की संलग्नता में कर की दर में हेरफेर संबंधी आरोप और छानबीन विशेष समिति गठन के बाद अर्थमंत्री शर्मा ने पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन छानबीन समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोष साबित न हो पाने के बाद उन्हें पुनः अर्थमंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने कहा कि काठमांडू घाटी के पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार प्रयत्नशील है। काठमांडू की गुहेश्वरी में निर्मित दूषित जल प्रदूषण प्रशोधन केंद्र का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री देउवा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि घाटी के निवासियों को स्वच्छ वातावरण में रहने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार योजना के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और अव्यवस्थित बसोबास के कारण प्रदूषित हो चुकी घाटी की मुख्य नदियों के संरक्षण के लिए सरकार जगह जगह प्रशोधन प्रणाली के काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशोधन प्रणाली जब अपना काम शुरू कर देगी तो बागमती नगायत नदियों में पानी इतना शुद्ध हो जाएगा जिसमें लोग कम से कम नहा सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि घाटी की नदियों से साफ पानी बहने की व्यवस्था की जाने पर धार्मिक पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी। कार्यक्रम में पेयजल तथा साफ सफाई मंत्री उमाकांत चौधरी ने कहा कि प्रशोधन केंद्र संचालन में आने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर से ऊपरी इलाके की बस्ती से आने वाला गटर का गंदा पानी प्रशोधित होकर ही बागमती में आएगा। मौके पर राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ विश्वनाथ पौडेल ने बताया कि सभी 7 प्रदेशों की राजधानियों में बहने वाली नदियों का अध्ययन कर उनमें जल प्रशोधन केंद्र की स्थापना करने के लक्ष्य के साथ काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशोधन केंद्र से गंदे पानी में मौजूद ठोस चीजों से बायोगैस उत्पादित होगी जिससे प्रशोधन केंद्र के लिए जरूरी बिजली का 50% हिस्सा उसी गैस से उपलब्ध हो जाएगा। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने जनता की सहजता के हिसाब से काम करने का मंत्रालय माथहत के निकायों को निर्देश किया। आज मंत्रालय में बुलाई गई वार्षिक समीक्षा और मंत्रालय स्तरीय समस्या समाधान समिति की बैठक में संचार मंत्री कार्की ने ऐसा निर्देश किया। वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम में रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक बुद्धि बहादुर केसी ने बताया कि रेडियो नेपाल की पहुंच इस समय देश की 91% जनता तक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में रेडियो नेपाल की पहुंच 100% जनता तक होगी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर निर्मल राज काफले को ब्राजील के लिए आवासीय राजदूत नियुक्त किया। यह जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। संघीय संसद की महिला तथा सामाजिक समिति ने राणा थारू को थारू आयोग के कार्यक्षेत्र से अलग करने का लिखित कारण पेश करने का सरकार को निर्देश किया है। थारू आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध में आज सिंह दरबार में बुलाई गई समिति की बैठक ने ऐसा निर्देश किया। साथ ही समिति ने सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के उन्मूलन संबंधी कार्ययोजना अब तक न बन पाने का लिखित कारण 15 दिनों के अंदर पेश करने का थारू आयोग को निर्देश किया है। गृहमंत्री बालकृष्ण खान ने आज सुबह खोटांग में आए 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से हुई क्षति और उद्धार संबंध में जिला प्रशासन कार्यालय और सुरक्षा निकाय के प्रमुख से जानकारी ली। गृहमंत्री खान ने उद्धार करने और घर ठहरने के कारण आवास विहीन हो चुके लोगों को जल्द अन्य स्थान पर व्यवस्थित करने का भी निर्देश किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेरबहादुर कुंवर को श्रमिक अस्पताल निर्माण संभाव्यता अध्ययन कार्यदल ने अपना प्रतिवेदन सौंपा। आज अध्ययन टोली ने देश के विभिन्न स्थानों में श्रम अस्पताल निर्माण के लिए आवश्यक स्रोत साधनों की संभाव्यता का अध्ययन कर 35 पेज का प्रतिवेदन मंत्री कुंवर को सौंपा। कार्यदल के संयोजक एवं श्रम मंत्रालय के सहसचिव दीपक काफले के मुताबिक, नेपाल सरकार द्वारा श्रम अस्पताल निर्माण के लिए दी गई सैद्धांतिक सहमति और सरोकार वाले निकाय के साथ कार्यदल के बार बार हुए विचार विमर्श के बाद अस्पताल की आवश्यकता की पुष्टि हुई थी। आगे उन्होंने बताया कि यथाशीघ्र अस्पताल निर्माण के काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नेकपा एमआलए के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि हमारे पर्व त्योहारों से दूर के संबंधों में भी अपनापन बढ़ जाता है। आज एमआलए कला साहित्य तथा संस्कृति विभाग द्वारा सावन 15 के अवसर पर पार्टी कार्यालय चैसल में आयोजित खीर खाने के कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली ने ये बात कही। खीर खाने के कार्यक्रम में एमआलए लगायत विभिन्न पार्टियों के नेता, संस्कृति कर्मी, लेखक और कलाकार सहभागी थे। आज देशभर में कोरोना के 620 नए मामले सामने आए हैं, ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। वहीं आज 297 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं और एक संक्रमित की मौत हो गई। बता दें कि आज 25,436 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में मॉनसूनी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या आज 320 पर पहुंच गई। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित बलूचिस्तान प्रांत का दौरा किया और लोगों को बचाव एवं पुनर्वास में हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। बलूचिस्तान में भारी बारिश और उसके चलते आई अचानक बाढ़ से अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को क्वेटा का दौरा करने के बाद संवाददाताओं के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री शरीफ ने देश में पिछले 5 हफ्ते से जारी बारिश और बाढ़ में जान गंवाने वाले तथा विस्थापित होने वाले लोगों के लिए मुआवजा पैकेज देने की घोषणा की थी। मध्य जून से हो रही मॉनसूनी बारिश के कारण पाकिस्तान में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जबकि पूर्व राजमार्ग को भारी नुकसान पहुंचने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। वहीं रेल पटरियों के जलमग्न होने से पाकिस्तान और ईरान के बीच ट्रेन सेवा भी बाधित होने की खबर है। शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में लगभग 13,000 घर या तो आंशिक या फिर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं सिंध प्रांत का सबसे बड़ा शहर कराची भी बारिश और बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और वहां अब तक कम से कम 70 लोगों की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के समक्ष पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। घाटी की नदियों में साफ पानी बहने की व्यवस्था होने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववा का कथन। नेपाल में आज कोरोना के 620 नए मामले आए सामने और पाकिस्तान में मॉनसूनी बारिश और बाढ़ से अब तक 320 लोगों की हुई है मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।